नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और उन सभी श्रोता भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपनी गवाही, अपनी आशीषें पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से और SMS के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपके पास भी ऐसी कोई गवाहियां हैं, आशीषें हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन दूर दराज में रहकर एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने विनती और प्रार्थना के निवेदन हम तक पहुंचाए हैं, जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान करें, उनके जीवन को आप स्पर्श करें, ताकि वे जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं और हम पुराने नियम में विश्वास के नायकों के विषय चर्चा कर रहे हैं। हमने हाबिल का विश्वास देखा, हनोक का विश्वास देखा, नूह का विश्वास देखा है। हाबिल विश्वास का मार्ग प्रकट करता है तो हनोक विश्वास का जीवन प्रकट करता है। नूह विश्वास का एक महान गवाह है। हनोक कलीसिया का प्रतिनिधि है कि वह उठा ली जाएगी, और नूह 144,000 इसराइलियों तथा अनेक अन्य जातियों का प्रतिनिधि है जिन्हें परमेश्वर महाक्लेश के समय सुरक्षित रखेगा। अब हम अब्राहम के बारे में देखेंगे, उसे विश्वासी कहा गया है। आइए हम देखें अब्राहम और सारा का विश्वास। अब्राहम को विश्वास का पुतला भी कहा गया है। रोमियों की पत्री में अब्राहम विश्वास का अति महान उदाहरण है, वरन गलातिया प्रदेश को लिखे पत्र में भी पौलुस अब्राहम को विश्वास के विषय में सिर आंखों पर रखता है। प्रभु यीशु ने भी उसके विषय में कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 56 पद में, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब्राहम में हम विश्वास की उपासना देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 8 पद को पढ़िए। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इस पत्री में हमने देखा है कि परमेश्वर की उपासना आज्ञाकारिता उत्पन्न करती है, वह परमेश्वर की सेवा की ओर ले चलती है और परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसे करने की प्रेरणा देती है। आवश्यक नहीं कि हम किसी को परमेश्वर की सेवा की प्रेरणा दें, यह उचित प्रेरणा नहीं है। यदि वे परमेश्वर की सच्ची उपासना करें और प्रभु यीशु की महिमा की झलक का एक अंश देख पाएं, तब आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस संपूर्ण भाग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द है आज्ञा मानकर, और उपासना से आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है। मेरे मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में अब्राहम की कहानी आरंभ होती है। वह कस्तियों के ऊर देश से निकलकर हारान को गया। हारान में उसने बहुत समय गंवाया और अंत में कनान पहुंचा। उस देश में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। वह जहां जहां गया वहां वहां उसने वेदी बनाई। मेरे मित्रों, इसराइल के भ्रमण में यदि आप जाएं तो आप हेरोदेश के निर्माण कार्यों को देखकर चकित रह जाएंगे। उसने मंदिर निर्माण का कार्य भी आरंभ किया था। उसने सब जगह महल, गढ़ और नगर बनाए, परंतु वह परमेश्वर का उपासक नहीं था, जबकि अब्राहम ने वेदियां बनाई और परमेश्वर की उपासना की, और परिणाम स्वरूप वह आज्ञाकारी ठहरा। उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की उपासना की और विश्वास ही के कारण परमेश्वर की आज्ञा मानी। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराय देश में, परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की बात पर सारा को हंसी आ गई थी, क्योंकि वह उस समय 90 वर्ष की थी और परमेश्वर ने उससे संतान प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। यह असंभव था, परंतु परमेश्वर ने उसे विश्वास करने का बल एवं सामर्थ्य दिया। आपको स्मरण होगा, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 17 से 27 पद में प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक के पिता से कहा था कि वह विश्वास करेगा तो सब संभव होगा, और उसने उत्तर दिया कि वह विश्वास करता है। वह जान गया था कि उसका विश्वास दुर्बल है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे विश्वास दिया क्योंकि उसने बालक को चंगा किया था। सारा के पुत्र का नाम इसहाक था। क्यों? उसने प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाने के बाद भी पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले पर विश्वास किया था। सारा विश्वास की क्षमता की प्रतीक है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वास के द्वारा हुआ था। परंतु याद रखें कि अब्राहम और सारा ने अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति नहीं देखी थी। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 13 पद में आगे लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन हम पर प्रकट करेगा कि हम परमेश्वर की संतान इस पृथ्वी पर यात्री एवं परदेशी हैं। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। विश्वास भविष्य में निहारता है और परमेश्वर की संतान आज भविष्य की ओर निहारती है। मेरे गांव में एक व्यक्ति है जिसके पास एक फार्म हाउस है जहां उसने फलों के पेड़ लगाए हैं। उसने उसे पैसों से खरीदा है, परंतु वास्तव में परमेश्वर ने उसे दिया है, जिसके लिए वह परमेश्वर का आभारी है। मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे इस स्थान में मोह में नहीं पढ़ना है। अर्थात एक स्थान है जहां मैंने छोटी सी जमीन खरीदी है और उसमें मैं मोह में पड़ना नहीं चाहता। मेरे मित्रों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इसके वियोग में दुखी होना होगा जब मैं उस अच्छे स्थान पर जाऊंगा। हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, क्योंकि हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं और एक उत्तम स्थान की बाट जोह रहे हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि परदेश की खोज में हैं। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और पढ़ें इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 15 और 16 पद को। लिखा हुआ है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जो सांसारिक वस्तुओं से संतुष्ट हो वह लौटकर संसार में आ सकता है, परंतु परमेश्वर की संतान आगे बढ़ती जाती है। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। मेरे प्रियो, अब हम अब्राहम के जीवन के अंत में आते हैं और उसके सर्वोच्च बलिदान को देखते हैं जो उसने अपने पुत्र की बलि चढ़ाने में प्रकट किया। यह पुत्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल था। इब्रानियों 11 उसके 18 में लिखा है, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। अब्राहम के अन्य पुत्र पुत्रियां भी थे, परंतु इसहाक को एकलौता कहा गया है क्योंकि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर ने अब्राहम से पुत्र बलि उसके जीवन के अंतिम समय तक नहीं मांगी थी, क्योंकि अब्राहम में ऐसा करने का विश्वास तब तक नहीं था। पहला क्रुंथियों की पत्री 10 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। अतः परमेश्वर ने अब्राहम से इश्माएल की पुत्र बलि नहीं मांगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले तो इश्माएल प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था और दूसरी बात कि वह काम अब्राहम से नहीं होता। अब्राहम ने तो परमेश्वर को यहाँ तक कहा कि वह इश्माएल को दूर न करे वरन उसे ही प्रतिज्ञा का पुत्र बना दे। अतः हम देखते हैं कि उस समय अब्राहम इस योग्य नहीं था कि वह पुत्र बलि दे पाए। इसहाक के बाल्यकाल में भी अब्राहम उसे त्याग नहीं पाता। जब इसहाक लगभग 30 वर्ष का हो गया तब अब्राहम का विश्वास इतना दृढ़ हो गया था कि वह पुत्र बलि चढ़ाने के योग्य हो गया। परमेश्वर पर विश्वास और उसकी आज्ञा पालन में वह अब अचूक था और यही कारण है कि यहाँ उसके विश्वास के परख का उल्लेख किया गया है। मेरे प्रियो, मैं अब्राहम को आम धारणा से हटकर देखना चाहता हूँ। हम प्रायः अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के परिवेश में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा का देश देने की प्रतिज्ञा की और उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करने की भी प्रतिज्ञा की। परंतु अब्राहम ने अपने जीवन में क्या पाया? उसने प्रतिज्ञाओं की पूर्ति अपने जीवन में नहीं देखी, परंतु परमेश्वर ने उसे एक परिवार दिया। कसदियों के ऊर देश में उसने सारा से विवाह किया। एक दिन वह घर आया और सारा से कहा कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है कि वह सब कुछ त्याग कर चला आए। सारा ने कहा होगा, आपका अच्छा कारोबार चल रहा है, यहाँ आपके संबंधी हैं, आपके मित्र हैं, परंतु आप कहाँ जाएंगे? अब्राहम ने कहा, मैं नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। क्या मतलब आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको कहाँ जाने के लिए सब कुछ त्याग कर निकल आने को कहा है? उसने कहा, वही मुझे लेकर के चलेगा। सारा ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस प्रकार यह युवा दंपति अपने घर को छोड़कर निकल पड़ा। उनका विश्वास उस समय अधिक नहीं था। उनके साथ अब्राहम का पिता और कुछ संबंधी थे। वे 13 की मृत्यु तक हारान में रहे। उसका दफन करने के बाद अब्राहम प्रतिज्ञा के देश पहुंचा और वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, अब्राहम, मैं तुझे सब कुछ दूंगा और साथ में एक पुत्र भी दूंगा। यही परिवार है। अब्राहम और सारा के पास एक पुत्र होगा। मेरे मित्रों, उस युग में अब्राहम और सारा का परिवार ईश्वर परायण था। हम ऐसे परिवार को मसीही परिवार कहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें मसीही परिवार का न तो कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया और न ही किसी परामर्शदाता के पास भेजा था। मैं स्पष्ट कहूं तो हम प्रचारकों ने बहुत अधिक परामर्श किया है कि युवाओं को कैसे क्या करना है। हम बहुत आदर्शवादी हो गए हैं, परंतु परमेश्वर व्यवहारिक है। उसने अब्राहम से कहा, यदि तुझे वह परिवार चाहिए जो मैं चाहता हूं तो तुझे अपने माता पिता से अलग होना होगा। आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने उससे कहा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तब उसके कहने का अभिप्राय यही था। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद में हम इसे पढ़ते हैं। जबकि आदम और हवा के तो माता पिता थे ही नहीं, उसने उसी समय यह एक सिद्धांत स्थापित कर दिया था। मेरे प्रियो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी पिता बनूंगा और माता पिता को समझाऊंगा कि बच्चों की देखभाल कैसे करें। मैं पिता होकर तो सफल नहीं रहा, परंतु परामर्श देना एक अति आसान काम है। वे चूक जाएंगे, परंतु यह मेरा काम नहीं। हमने भी गलतियां की हैं और वे भी करेंगे। माता पिता बच्चों के परिवार में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा होगा। इसी कारण परमेश्वर ने अब्राहम को अपने संबंधियों से इतना दूर कर दिया कि वे उसके परिवार में हस्तक्षेप न करें। मेरे विचार में परमेश्वर पर आश्रित परिवार के लिए यह एक मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम को जिस परिवार से अलग किया था वह परमेश्वर रहित मूर्ति पूजक परिवार था। इसे हम अध्याय 24 के 2 पद में पढ़ते हैं। यहोशू ने यह स्पष्ट किया है इसके विषय में। आज युवाओं को विवाह के संबंध में अनेक नियम समझाए जाते हैं। मैं क्रांतिकारी होना नहीं चाहता, परंतु निश्चय ही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। विश्वास के जीवन आचरण में आपको नियमों को अनदेखा करने की छूट है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको अपने परिवार में विश्वास का जीवन जीना है। पिता और माता दोनों को विश्वास का जीवन जीना है। क्या आप जानते हैं कि परिवार कभी भी एक आदर्शवादी परिवार नहीं हो सकता है? जैसी अधिकांश लोगों की मनोकामना है कि उन्होंने परामर्श द्वारा अपने परिवार को महिमामय बना लिया है। मेरे प्रियो, मैं वर्षों विवाहित जीवन व्यतीत कर चुका हूं और हम पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न होते ही रहते हैं आज भी। सच तो यह है कि मेरी पत्नी को चूकने का अधिकार है, परंतु हम सदा ही उस स्थान पर होते हैं जब मैं उससे कहता हूं कि भूल चूक के उपरांत भी मैं उससे प्रेम करता हूं। अतः मेरे विश्वासी भाइयों, यदि आपके विचार में आप एक आदर्शवादी परिवार बना सकते हैं तो आप भ्रम में पड़े हैं। आप देखेंगे कि आप पर भी अब्राहम के समान परीक्षा आएगी जब वह मिस्र में गया था। जी हां, सारा ने तो कहा था कि वह मिस्र जाना नहीं चाहती है, परंतु वह गया अपने झूठ के कारण कि सारा उसकी पत्नी नहीं है। वह सारा से लगभग हाथ धो चुका था। यह तो एक आदर्श परिवार नहीं है। मिस्र से प्रतिज्ञा के देश में लौट आने पर अब्राहम और उसके भतीजे लूत के मध्य दरार उत्पन्न होने लगी थी। अब्राहम उसे कश्तियों के ऊर देश में छोड़ देता तो ही अच्छा था। परिणाम यह हुआ कि लूत अब्राहम को पर्वतीय प्रदेश में छोड़कर सदोम चला गया। यहां भी हम देखते हैं कि अब्राहम और सारा का परिवार आदर्श परिवार नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि वह सदोम और अमोरा को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर ने उसे समझाया कि वह जो करने जा रहा है वह न्याय सम्मत है एवं धार्मिकता का काम है। उसने सारा को भी स्पष्ट बताया कि वह उसे पुत्र जनने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। उसने उन्हें एक शिशु प्रदान किया कि वे उसका लालन पालन करें। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अब्राहम और सारा के समान अपने परिवार को बनाएं। यदि आप यह सोचते हैं कि कुछ नियम बनाकर उनके अनुसार जीवन यापन करने से जीवन की कठिनाइयां और कष्ट दूर हो जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। आप देखेंगे कि आपको अपनी पत्नी के साथ विवाद करना पड़ रहा है। आपको परमेश्वर द्वारा दी गई संतान के साथ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपका परिवार किसी भी प्रकार से आदर्श परिवार नहीं है। आप इन सब समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। मेरे मित्रों, विश्वास के द्वारा जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएं, जब हम अपने संतान को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा पाएं, तब हम सफल हुए। अब्राहम और सारा का परिवार परमेश्वर की इच्छा के उतना ही निकट था जितना हम में से कोई उपलब्ध कर पाए। मेरे विश्वासी मित्रों, यदि आपके साथ परिस्थिति कठिन है और आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर को अपना शिक्षक होने दें। अपने पादरी के पास न जाएं या समस्याओं के समाधान का कोई पाठ्यक्रम न सीखें। समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, परंतु यदि हम विश्वास का जीवन जिएं, तो परमेश्वर हमें पार लगाएगा, हमें सफलता देगा। अब्राहम की विश्वास आधारित उपासना के कारण वह आज्ञाकारी बना। यही कारण था कि उसके लिए कहा गया रोमियों की पत्री 4 अध्याय के 3 पद में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसहाक का विश्वास। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आप देखेंगे कि इसहाक के बारे में बहुत कम कहा गया है, विशेष करके उसके पिता की तुलना में। इसहाक के विषय में हम क्या कह सकते हैं? वह विश्वास की स्वीकार्यता प्रकट करता है। जब अब्राहम ने उसे बलि की वेदी पर रखा था, तब वह लगभग 30 वर्ष का वयस्क था, जवान था। यह निश्चय ही उसकी सहमति का प्रदर्शन है। लिखा है, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहां जिस बात पर मुख्य ध्यान दिया गया है, वह है कि उसने विश्वास के द्वारा ही अपने पुत्रों को आशीष दी। यह एक विचित्र बात है कि इसहाक कुआं खोदने वाला था। वह कुआं खोदता था और बैरी उस पर कब्जा कर लेते थे। वह दूसरा कुआं खोदता तो बैरी उस पर भी कब्जा कर लेते। वह कैसा भी बदरंग चरित्र था, उसकी विशेषता थी कि वह इच्छा रखता था। उसने याकूब और एसाव को आने वाली बातों की आशीष दी, जबकि वर्तमान में उसे आशीष देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे मित्रों, यहां पर हम अब्राहम, इसहाक और उनके विश्वास को देख रहे हैं, जो हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए, परिवार के लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने विश्वास और परिवार के बारे में सीखा है और इसके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस जाती है, वो राह हमारी है। लंबी